शर्मीन, SBS उर्दू के लिए आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो SBS की तरफ से आपको बहुत मुबारक हो कि आपकी डॉक्यूमेंट्री गर्ल इन द रिवर एक दफ़ा फिर ऑस्कर के लिए मुंतखब हुई है। आपकी जो डॉक्यूमेंट्री है, इसकी स्टोरी के बारे में भी मेरे कुछ सामईन को जरा बताइएगा।
बहुत शुक्रिया। गर्ल इन द रिवर कहानी है एक लड़की जिसको उसके खानदान वालों ने गोली मार के एक नहर में फेंक, और जब वो नहर में गई तो जब उसकी लाश जो नीचे गिरी तो नीचे हुई तो पानी से उसको होश आया, और जब उसको वो होश आया तो उसने किनारे पे जो पौधे थे उसको पकड़ के बाहर निकली, और फिर उसने रात को कोई 12-1 बजे जब वो निकली तो अंधेरा गुप्त था और वो बहुत सुनसान इलाका था, तो दूर से उसको एक लाइट नज़र आई तो वो चल 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 के एक पेट्रोल स्टेशन था, वहाँ कोई रात को 12 बजे पहुँची है तो वहाँ अकेला गार्ड जो था वो सो रहा था, उसको जब उसने उठाया तो रेस्क्यू 1122 कॉल किया, फिर वो अस्पताल पहुँची और वहाँ से उसकी कहानी शुरू होती है। तो ये गैरत वाले कत्ल जो पाकिस्तान में होते हैं और दुनिया भर में होते हैं उसके बारे में है कि एक लड़की को क्या बीतती है।
आप ख्याल करती हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर, पाकिस्तानी माशरे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पर बात करना बहुत मुश्किल है, तो आपका क्या ख्याल है, क्या ये बात सही है, और अगर ऐसी बात है तो कौन कौन से ऐसे अभी भी मौजूदात हैं जिन पर हम बात नहीं कर सकते, हम डॉक्यूमेंट्री बनाते हुए बहुत कुछ सोचते हैं।
देखिए, गैरत वाले कत्ल के बारे में तो बहुत कम लोग इस मुल्क में बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग कतराते हैं बात करते हुए। गैरत वाले कत्ल जो हैं, अगर आप रोज़ सुबह अखबार उठाएं, 1 से 2 गैरत वाले कत्ल इस मुल्क में रिपोर्टेड होते हैं, तो आप सोचें कि कितने कत्ल इस मुल्क में नॉन रिपोर्टेड होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ये घर का मामला है, घर ही में दबा देना चाहिए, कभी ना लाश मिलती है, ना केस दर्ज होता है, ना कोई जेल जाता है। तो सैकड़ों ऐसी खवातीन हैं जिनके हम नाम भी नहीं जानते जो इस मुल्क में गैरत के नाम पे कत्ल हो गई हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा अहम टॉपिक इसलिए है, इसलिए क्योंकि जिस मज़हब के अंदर औरत को इतना दर्जा दिया जाता है कि उसका अगर निकाह हो रहा हो और 3 दफ़ा उसको पूछा जाता है कि उसका निकाह कबूल है उसको या नहीं, अगर 1 दफ़ा भी वो हिचकिचाती है, कहा गया है उस दिन उसका निकाह नहीं हो सकता, तो अगर जो मज़हब इतना औरत को बुलंद देता है तो उस मज़हब के अंदर आप किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं कि गैरत वाले कत्ल होते हैं। इस मुल्क में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, गैरत वाले कत्ल, बच्चों की शादियां, अंडर एज लड़कियों की शादियां, तेजाब लड़कियों के ऊपर फेंकना, शिद्दत पसंदी, स्वारा जो होता है KPK की तरफ, कारोकारी जो सिंध में होती है, बेतहाशा मसले हैं जिन पे आई थिंक कि अगर काम किया जाए तो पाकिस्तान एक बेहतर मुल्क भी बन सकता है और खावतीन का जो स्टेटस है इस मुल्क में बेहतर हो सकता है, क्योंकि ये मसले ऐसे नहीं है कि ये ख़त्म नहीं हो सकते, ये माशरे में इसलिए हैं इसलिए क्योंकि इनके लिए जुर्म, ये लोग समझते हैं कि ये जुर्म ही नहीं है, क्योंकि लोग जेल ही नहीं जाते इन चीज़ों के लिए, अगर लोग जेल जाना शुरू कर देंगे तो शायद ये एहसास होगा कि ये जराइम हैं और इनको नहीं करना चाहिए।
पाकिस्तान के अंदर एक बिल भी मंजूर किया गया था जिसमें कहा गया था कि कम उम्र बच्चों की शादी नहीं होनी चाहिए और जो लोग 18 साल से ज़्यादा के हों उनको शादी की इजाज़त होगी, लेकिन हमारी जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है उसने इस बिल की मुखालफत की है। आप क्या ख्याल करती हैं कि कहाँ पे कमी रह गई है, जो हमारे लॉ मेकर्स हैं क्या उन्होंने अच्छी तैयारी नहीं की थी, या आप समझती हैं कि इसके अंदर कोई और मामला है?
देखें, 2016 के अंदर ये तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए कि अंडर एज मतलब कम उम्र की लड़कियों की शादी होनी चाहिए, ये तो होना ही नहीं चाहिए। देखिए, हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, जो लेजिस्लेटर्स हैं, वो डरते हैं इन मौलवियों से जो वो बहुत आवाज़ बनाते हैं, मगर आप जाकर इन मौलवियों से पूछें कि उनका बेसिस कहाँ है, उन्होंने कुरान और हदीस पढ़ा है, इतना पढ़ा है कि उनको पता है, वो सब कहते हैं हज़रत आयशा की वजह से अंडर एज शादियां होनी चाहिए, मगर बहुत सारे ऐसे हदीस हैं जो कहते हैं कि हज़रत आयशा अंडर एज नहीं थी, कहा गया है कि हज़रत आयशा गई थी बैटल के अंदर, ठीक है, पानी देने के लिए, 8 سال کی بچی کبھی بیٹل میں جاتی ہے جہاں جنگ ہو رہی ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے تھے 15 سال کے لڑکے جو ہیں اس سے نیچے جہاد پہ نہیں جانا چاہیے لڑکوں کو. اگر 15 سال کے نیچے والے بچوں کو نہیں جانا چاہیے جہاد کے اوپر, تو 8 سالہ لڑکی کیسے جا سکتی ہے پانی دینے کے لیے انجرڈ لوگوں کو؟ میں تو کہتی ہوں کہ حدیث جو ہے مینیپولیٹ ہوئی ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ انڈر ایج شادیاں ہونی چاہیے, بالکل اس کے اندر تو گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے.
آپ کیا خیال کرتی ہیں, ہمارے جو لاک میکرز ہیں ان کا کام اچھا نہیں تھا, مضبوط نہیں تھا, انہوں نے جو اپنا ہوم ورک کیا تھا وہ صحیح نہیں کیا تھا, یا جو اس کی اپوزیشن ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ رہی؟
ان طرح کے معاملوں میں جہاں مذہبی تنظیمیں مبتلا ہو جاتی ہیں, وہ اپنی آوازیں بہت بلند کر کے روڈوں پہ آ جاتی ہیں. وہ ان کے جو ٹیکٹکس ہیں, مطلب وہ جو امپلائے کرتے ہیں وہ سکیئر ٹیکٹکس ہیں, وہ لوگوں کو ڈراتے ہیں. کیونکہ وہ ڈراتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی, مجھے لگتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ڈرا کے پولیٹکس کرتے ہیں, تو ہمارے جو مولوی حضرات ہیں وہ ڈرا کے پولیٹکس کرتے ہیں اس ملک کے اندر. اگر وہ ایک ڈبیٹ کریں اور لے کر آئیں سامنے حدیث اور کاؤنٹر حدیث جو ہیں پراپرلی دیکھا جائے, بھائی آپ سوچیں 8-9 سال کی بچی کی شادی کس طرح ہو سکتی ہے؟ میڈیکلی بھی نہیں شادی ہو سکتی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے فارورڈ تھنکنگ تھے, انہوں نے خواتین کو اتنے سارے رائٹس دیے, تو وہ کیسے 8-9 سال کی بچی کی شادی کروا سکتے تھے؟
میں آتا ہوں اب آپ کی اس جو گرل ان دا ریور ہے, اس کی جو نامینیشن ہوئی ہے اس کی طرف. آپ کی جب اس ڈاکیومنٹری کو انہوں نے منتخب کیا, آپ کے کیا احساسات ہیں؟
دیکھیے بہت ریئر ہے کہ کسی نے ڈاکیومنٹری فلم کے ایز اے ڈائریکٹر اوارڈ جیتا اور پھر واپس 3 سال بعد یا 4 سال بعد واپس آ گئے ایز اے نامنیٹڈ ڈائریکٹر, تو مجھے بہت خوشی ہے. مگر اس دفعہ میں زیادہ مجھے خوشی ہوگی اگر جو بل پارلیمنٹ میں پھنسا ہوا ہے اینٹی آنر کرائم بل, وہ پاس ہو جائے اس فلم کی نامنیشن کے ہی باعث. اور اگر اس دفعہ وہ بل پاس ہو گیا تو مجھے لگے گا کہ آسکرز سے زیادہ بڑی جیت ہوگی.
آپ سے ایک بات یہاں میں ضرور پوچھنا چاہوں گا, آپ ایک طویل عرصے سے کام کر رہی ہیں, آپ کی ایک ڈاکیومنٹری آسکر ایوارڈ کو جیت چکی ہے, دوسری کی نامینیشن ہو چکی ہے, خود آپ کو کہاں پہ دقت پیش آتی ہے, آپ کو کہاں پہ مشکلات آتی ہیں جب آپ کام کر رہی ہوتی ہیں, خصوصاً اگر آپ پاکستان میں کام کر رہی ہیں؟
دیکھیں پاکستان میں مجھے لگتا ہے سب سے بڑی جو دشواری لوگوں کو پیش آتی ہے وہ ذہنی سوچ لوگوں کی. اس فلم کو بھی اے گرل ان دا ریور جب میں بنا رہی تھی تو سب سے بڑی جو دقت ہمیں پیش آئی تھی وہ لوگوں کی سوچ کے غیرت والے قتل تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے کہ ان کا حق بنتا ہے ایک عورت کو مارنا. تو اور کیونکہ لوگ جیل نہیں جاتے اس کے لیے, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے علاقے میں اس نے اپنی بیوی کو مارا, اس نے اپنی بیٹی کو مارا اور کوئی جیل نہیں گیا, تو میں بھی کل مار دوں گا, تو کوئی میں جیل نہیں جاؤں گا. اس طرح کی سوچ کو لے کر چلنا بہت مشکل بات ہے کہ ہم سب پاکستان میں رہتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی کیا اچھی باتیں ہیں اور کیا بری باتیں ہیں, مگر وہ ذہنی سوچ جو ہے وہ ذہنی سوچ کو کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر رہا, کوئی نہیں کہہ رہا ان لوگوں کو کہ یہ غلط ہے, کوئی جیل نہیں بھیج رہا ان لوگوں کو, کوئی یہ نہیں کہہ رہا گاؤں میں کہ دیکھیے آپ اپنی بیٹیوں کی تحفظ کیا کریے, آپ کون سا آپ کا مذہب بتاتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو آپ قتل کر دیں؟ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر کہ اپنی بیٹی کو آپ مارو؟ وہاں تو لکھا ہوا ہے کہ ایک بندے کو مارنا ہے پوری انسانیت کو مارنے کی طرح ہے. تو جو مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ جو مذہب اتنا رحم دل مذہب ہے, اس مذہب کے اندر ہم اتنی تکلیفات لوگوں کو کیوں پہنچا رہے ہیں؟
آپ خیال نہیں کرتے ہیں کہ جن حساس موضوعات پہ اس وقت آپ کام کر رہی ہیں اور آپ جن چیزوں کو سپورٹ کر رہی ہیں اپنی ان ڈاکیومنٹری کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے اندر بھی, آپ کی مخالفت کچھ بڑھ جائے گی اور آپ کو کافی مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, آپ کو اندازہ ہے اس بات کا؟
دیکھیے جو اس ملک میں رہتا ہے اس کو اس ملک کو بہتر بنانا ہے, اگر ہم اس ملک کو بہتر نہیں بنائیں گے تو آنے والی نسلیں ہمیں کوسیں گی. میں نہیں چاہتی کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ایک پاکستان چھوڑ کے جائیں جس پاکستان پہ ہم فخر نہیں کرتے ہیں. تو اگر ہمیں اس پاکستان کو بنانے میں مشکلیں دھکیلنی پڑیں گی تو پھر کرنی پڑیں گی. ہم بہت سارے لوگ ہیں پاکستانی جو اپنی زندگی پہ کھیل کے روز काम करते हैं ताकि एक बेहतर मुल्क बने, तो वो सब क्यों कर रहे हैं, हम सब क्यों कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि वही पाकिस्तान जो हमारे पर नाना पर दादा ने बनाया था वो वापस आ जाए, तो उसके लिए सबको जद्दोजहद करनी होगी, तो जद्दोजहद करनी होगी।
अभी मुस्तकबिल करीब में क्या पेश करने के लिए जा रही हैं गर्ल इन द रिवर के अलावा, आपका क्या काम जो हमारे नाजरीन हैं वो देख सकेंगे?
देखिए, पिछले साल मैंने एक फिल्म बनाई थी बच्चों के लिए, तीन बहादुर, पाकिस्तान की पहली एनिमेटेड फीचर फिल्म थी और पाकिस्तान के 10 शहरों में सिनेमाज में चली थी और अब हाल ही में टेलीविज़न पे भी चली थी। इस तीन बहादुर का जो दूसरा हिस्सा अब बनाने जा रही हूँ। मैं समझती हूँ कि जिस मुल्क के अंदर 60% से भी ज़्यादा लोग 25 साल के उम्र के कम हों, उनके लिए एंटरटेनमेंट ज़रूरी है। और हम जब बड़े हो रहे थे तो हमारे लिए बहुत सारी ऐसी चीजें थी टेलीविजन पर, अंकल सरगम था, ऐनक वाला जिन था, बट हमारे बच्चों के लिए पाकिस्तानी कैरेक्टर्स या पाकिस्तानी जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत कम हैं। तो मेरी जद्दोजहद रहेगी कि मैं बच्चों के लिए कुछ काम करूं इस मुल्क में।
आप हमको मालूम है कि डिवोर्स जा रही हैं, तो डिवोर्स में क्या होने के लिए जा रहा है?
डेवोस में मैं एक पैनल पे बात कर रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग इस्लाम, कि इस्लाम को इस वक्त दुनिया किस नज़र से देख रही है और किस तरह हम इस्लाम को बेहतर समझ सकते हैं। उसके अलावा मैं दिखा रही हूँ अपना काम और मैं शेयर कर रही हूँ अपनी क्लिप्स काम से और मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। और दो और इवेंट्स हैं जहाँ मैं बात कर रही हूँ कि फिल्म को किस तरह हम सोशल चेंज का टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या इम्पैक्ट फिल्म का हो सकता है लोगों के ऊपर। तो काफ़ी पैनल्स हैं और एक ऑडियंस जो हमारे काम और हमारे मुल्क से फेमिलियर नहीं है उनको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी अपना काम। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की ये जीत है कि एक पाकिस्तानी खातून वहाँ इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अपना काम शेयर कर रही हैं और दिखा रही हैं कि हम सब किस तरह पाकिस्तान में अच्छाई की तरफ या जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं।
ऑस्ट्रेलिया में जो लोग SBS उर्दू की नशरियात इस वक्त सुन रहे हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे?
मैं ऑस्ट्रेलिया पिछले साल मेरी फिल्में और मेलबर्न एंड सिडनी में फिल्म फेस्टिवल्स में प्ले करी थी। 2016 में इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि मैं ऑस्ट्रेलिया आऊं, मेरी फिल्म्स जो हैं वो शायद फिल्म फेस्टिवल्स में प्ले करेंगी। तो आई होप आखिरकार, क्योंकि मैं कभी ऑस्ट्रेलिया आई नहीं हूं, कि मेरा ट्रिप जरूर लग जाए। थैंक यू।